लगा दी थी उस पाबंदी को खत्म करते हैं बसाबू बजाई सीमा है अमर का बजाई हुक्म हो रहा है लेकिन बात यह है कि अब तुम शिकार कर सकते हो वरना साहिब रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इस पर अमल करते और बता देते कि हज कर लिया है और सब चले जाओ जंगलों में शिकार अलग आना इसलिए कभी कभी कुरान में एक लफ्ज हुक्म के माना में आता है बजाए लेकिन तफसीर से पता चलता है कि इस हुक्म का मतलब क्या है अभी मुसला दिमाग कायम करो आपको यहां पे अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो तो अल्लाह ने कहा मतलब यह है कि नमाज कायम कर सकते हो तुम्हारा जी चाहे तो करो जीना चाहे तो ना करो इसको कोई नहीं कहे सब कहेंगे कि ये हुक्म है फर्ज वो शिकार करने पे सारी उम्मत कहती है कोई फर्ज वाजिब क्या वो तो सुन्नत भी नहीं है सिर्फ ये बताया गया कि हुक्म पहले दिया था अब इस लफ्ज से मंसूख हो गया यहां भी ऐसी हमने पेश किया अल्लाह ताला ने फरमाया हमने क्या किया सामने रखा आसमानों और जमीनों के क्या चीज पेश की पहली बात तो ये है कि क्या ये पेश करना हकीकत में था और दूसरी बात ये है कि क्या अल्लाह ताला ने इसको किस जमाने में किया ये काम कब हुआ था तो इस कायनात में अल्लाह ने इंसानों को भेजने से पहले बहुत से आपको पैमान थे जो आलिम अरबा में हुए कोई उसकी खबर नहीं दे सकता था सिवाय अल्लाह और अल्लाह की खबर सबसे ज्यादा मुस्तनद जरिए जो पहुंची है वो खुदा की किताब है कुरान है और तौरात और इंजील और ज़बूर की जो वही थी वो वक्त के साथ साथ बदल गई इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो कुछ आया है वो वाकई अल्लाह की तरफ से आया है कुरान एक ऐसी चीज है कि 1500 साल हो गया आज तक इस दुनिया में एक मिनट के लिए कुरान गायब नहीं हुआ पूरी दुनिया में ऐसे नहीं कहीं भी हाफिज रहे कुरान लिखा हुआ आज का हर मुसलमानों के घरों में मुल्कों में महफूज रहा है फिर जब छपने का जमाना आ गया तो अब तो ये इंसान ही नहीं है जो कुरान खत्म हो जाए हर जगह मौजूद तो खुदा की वो आखिरी वही जो नाजिल हुई है वो बताती है कि इंसान की दुनिया में आने से पहले क्या क्या होता रहा इस कायनात में मसलन एक चीज कुरान ये बताता है कि लगाना ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा किया और कहा देखो ये एक हस्ती है अगर मैं इसे तुम्हारे जमाने में भेज दूं दुनिया में इसे रिसालत दे दूं तो फिर ना भी वला तन सुनना तो तुम जरूर इस पर ईमान लाना और इसकी मदद कर और उस रूह मुबारक ने कहा कि देखिए अगर हम आपको इनके जमाने में भेज दें तो आपने इनकी नबूवत की तस्दीक कर दी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भेजते सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में भेजते तो आप इनकी तस्दीक करेंगे और ये आपकी मदद करेंगे अब ये दो पैमान पूरी दुनिया से नहीं किया गया सिर्फ उनसे जिनको खुदा ने नबूवत देनी थी और वो हस्ती सूरह आले इमरान बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उनके मुतल्लिक कहा गया कि अगर ये आ गए ना आपके जमाने में तो ये आप पर ईमान लाएंगे और आप इन पर ईमान लाएंगे और फिर आप इसकी मदद भी करेंगे ये कोई हुआ है आपको पैमान के बिना हुआ है कुरान बताता है अब हमें नहीं मालूम जाए इसको क्या पता चलता है इससे थोड़ा सा ऊपर चले तो कुरान ही हमें ये बताता है कि इंसानों सब की रूहों को जमा किया गया जो भी क़यामत तक आने वाले बच्चे थे इंसान थे और सबकी मुंह को जमा करके अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ पालू पला लोगों ने कहा अरब क्यों नहीं अलग तो फिर रखते सबसे पहला हर अलिफ बोला गया अलग तो अल्लाह की तरफ से कहा गया क्या नहीं मैं तुम्हारा परवरदिगार कालू बला लोगों ने कहा बला बेफिक बोला गया ना कहता क्यों नहीं यकीनन आप हमारे रब हैं ये अल्लाह ने अपनी मारिफत का बीज हर आदमी के दिल में डाल दिया अब इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा काबिल भी अल्लाह का इंकार नहीं करता जाहिर में करता है لیکن جب پریشانی اور مصیبت جس دن آتی ہے ان دن اللہ ہی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بس وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اردو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے, وہ زندگی بھر تلقین کرتے رہے کہ خدا نہیں ہے. ایسے ہی ہے, کمیونسٹ ہو گئے یا جو کچھ بھی ہو گئے, پہلا دن کا جب دورہ پڑا تو ان کے شاعر دوست ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے زندگی بھر کی. تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا بس ایک ہی ہفتے میں اللہ پر پہنچ گئے, کہنے کے بعد ایک ہی بس کھینچائی ہوئی ہے اور خدا یاد آ گیا. تم تو کہتے تو خدا ہی کہتے ہیں, میں ایسے ہی کہتا تھا. میں کہتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں اس طرح جس کا بس کرو, ابھی تو پہلا تھپڑ چڑھایا تم نے اور ابھی اللہ یاد آ گیا. دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی حتیٰ کے سالن نے اور لینن نے ان کی جو تعریف لکھی گئی بیٹی ہے لینن کی, اس نے ایک اپنے باپ کی زمانے لکھی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے اس سے کہا مرنے سے پہلے روح نہیں نکل رہی تھی کہ ہر عبادت والوں کو عیسائی یہودی اور مسلمان انہیں کہو کہ اپنے اپنے عبادت گاؤں میں اللہ سے دعا کریں, کسی طرح موت آ جائے روح نہ نکلنے کی تکلیف ہے. تو کون ہے جو اللہ کا انکار کر سکے؟ وہ جو اللہ نے اپنی معرفت کی روشنی بیج دل میں ڈال دیا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے آدمی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتا ہے. ماں کو ذرا سی خبر پہنچتی ہے کہتی ہے یا اللہ ہے, باپ کو ذرا سی تکلیف کی خبر پہنچتی ہے کہتا ہے اے اللہ تیری تو مالک ہے, یہ ساری چیزیں تیری ہیں اے اللہ خیر ہاں مہربانی. ہر آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ ہے. اب انسان آ کر عہد کو بھول گیا, اس سے بھی پہلے وعدہ ہوا ہے خدا اس کا ذکر کر رہا ہے. اسی لیے یہاں پر سرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز پیش کی تھی امانت وہ سب سے پہلی تھی. کائنات اس کی وقت میں ہوا ہوگا, آدم علیہ السلام کو روحوں کو خدا نے جمع کیا ہوگا, تو اس وعدے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. لوگوں نے کہا ہاں اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار کیوں نہیں. یہ جو عادت ہے کہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہوا کب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید اس کائنات میں سب سے پہلا واقعہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی. اب امانت کی کیا معنی؟ امانت کے معنی یہ تھے کہ تم ہماری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے. جب انسان نے کہا کہ اللہ میں امانت کو قبول کرتا ہوں, اللہ نے اس کے بعد کیا اچھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں. پھر خدا نے کہا کہ تم کو نکال دو جو بھی علیہ السلام ہیں, اور انہیں کیا کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. تو یہ وعدے جو ہیں سب سے پہلا ہے کہتے ہیں کہ ہوا ہے کہ اللہ نے پیش کیا. کس چیز کو؟ یہ تو آ گئی امانت کا لفظ کہ امانت کو اللہ نے پیش کیا. امانت چیز کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امانت سے مراد استعداد ہے. ایبلٹی, ہر ایک کی اپنی استعداد مختلف ہے. ایک آدمی 100 کلو اٹھا لیتا ہے, ایک آدمی 10 کلو نہیں اٹھا سکتا, بڑھاپا آ گیا. ہر ایک شخص کی استعداد مختلف ہے. ایک کی استعداد یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک ملک پہ حکمرانی کرے. ایک آدمی کی استعداد اتنی اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے ایشیا بھی میری حکمرانی کے لیے تھوڑا ہے, مجھے تو دو چار ملک اور بھی دے. اندرا گاندھی کی انٹرویوز آپ پڑھیں, کسی زمانے میں جو ہندوؤں کی حکومت تھی ٹیکسلا ان کا دار حکومت تھا, اور ٹیکسلا میں ہندو بیٹھ کر آسٹریلیا میں حکومت کرتے تھے. تو کسی نے اندرا سے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے, تو ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ایسی حکومت اب مجھے کہاں مل سکتی ہے. یعنی حضرت اور افسوس نہ یہ نہیں کہا کہ میں اس کی اہل نہیں ہوئی ہے, کوئی دوسرے کا ایسی حکومت کہاں ملتی ہے. یعنی ہو تو ہاں ہوں میں اس کا ہوتی ہے, یعنی کی الگ بات ہے. لیکن انسانوں کا حال یہی ہے کہ استعداد سے کبھی کبھی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہے, اور یہ گناہ کی بات ہے. اپنی استعداد سے بڑی چھلانگ لگا لینا یہ گناہ کی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کی استعداد یہ ہے کہ وہ 4 گھنٹے کام کر سکتا ہے اور ٹھیکہ لے لیتا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کا. 4 گھنٹے کام نہیں کرے گا نا, بہت زور لگایا 6 گھنٹے کر لے گا, 2 گھنٹے اس نے نہیں کام کیا, یہ اسے جھوٹ بول دیا. آدمی اتنا کام اپنے ذمے لے جتنی اس کی استعداد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا
तो जिसने अमीन ने मुझे दिखाया इसको देखिए मैंने आदमी को देखा लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा उसे उठाई नहीं जा थोड़ा सा आगे चलता है फिर वो अपने गड्ढे को खोलता है गड्ढे को एक लकड़ी और रख देता है फिर उसे उठाता है फिर खोलता है फिर एक लकड़ी और रख लेता है मैंने सोचा ये तो कम लकड़ियां नहीं उठा सकता बार बार एक लकड़ी का इजाफा कर रहा है ये कैसी अजीब बात है मैंने जबीर से पूछा कि ये कौन है उसने कहा अल्लाह ने इसे सजा दी है इस बात की कि जो काम नहीं कर सकता था दुनिया में हर एक से वादे करता फिरता था और काम हो गई तो घर से निकले दस वादे कर दिए बेटे का भी काम बेटी का भी बीवी का भी माँ का भी ना का भी ना का भी और काम तो कराओ तो हर कोई कहता है कि अगर आपने नहीं करना था तो मुझे बता देते आपसे नहीं होता अब वो सारे एक आदमी के साथ लटके हुए ये है अपनी इस्तेआत से बढ़कर काम का साथ डाल लेना ये वो चीज है जिसको शरीयत पसंद नहीं करती तो हजरत शाहबुद्दीन रहमतुल्लाह ने कहती इस्तेआत जो इंसान की है ये अमानत इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह यहाँ पर ये समझने की बात है कि वो इसे कोई मौजज़ा या ऐसी चीज करार नहीं देते इसे मौजज़ा या कोई ऐसी अनहोनी चीज करार नहीं देते आगे चलकर वो कहती हैं कि अन्नन मुराद बिल अमानती तकल्लुद अब्दत तकलीफ अमानत से मुराद इस आयत की ये है कि आदमी की इस्तेदाद है कि सवाब वल इबाद कि उसने अपने जिम्मे ये उठा लिया कि सवाब और अजाब को बर्दाश्त करेगा बिताते अल्लाह की इताअत करेगा सवाब मिलेगा गुनाह करेगा उसको अजाब होगा और ये इला इस्तेदादे हिन्ना अल्लाह ने आसमानों और जमीन का जो जिक्र किया है उनकी इस्तेदाद के मुताबिक है और आवाई हिन्ना और वे अवाई हिन्ना और उनका ये इनकार करना अलिबा उस तबई ये तबई तौर पर फितरी तौर पर है अल्लाह की वाद लिया का और ये बात दलील है इसकी कि उनमें ताकत ही इतनी नहीं थी आसमान जमीन और पहाड़ों में वल इस्तेदाद और उनकी इस्तेदाद ही ये नहीं थी वगे अमलिल इंसान काबिलियत हो वह इस्तेदाद हो लहा और इंसान ने अमानत को इसलिए ले लिया कि उसने ये करार किया कि उसने ये काबिलियत और इस्तेदाद है क्या रहमतुल्लाह ने इसी बात से पता चलता है कि इसे कोई गैर मामूली चीज नहीं समझते क्या रहमतुल्लाह ये समझते हैं कि वो जो अमानत अल्लाह ने आसमान जमीन पर पेश की कोई अमानत ऐसी की नहीं और ना कभी ये वाकया हुआ है उनका कहना ये है कि जिस तरह इंसान शेर के सामने घास नहीं रखता और जिस तरह इंसान बिल्ली के सामने घास नहीं रखता जिस तरह इंसान मुर्गी के सामने गोश्त नहीं रखता बिल्कुल इसी तरह जो इस्तेदाद नहीं थी आसमान में जमीन में पहाड़ों पे अल्लाह ने इस्तेदाद का अंदाजा दिया कि मेरी इमानत उठा पहुंच सकता है तो लगाना ने कोई इल्म है कि इंसान उठा सकता है लिहाजा अल्लाह ने अमानत का ओहदा इंसान को दे दिया अल्लाह ने आसमानों जमीन और पहाड़ को दिए ही नहीं पूछे ही नहीं क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि आसमान में इस्तेदाद नहीं आसमान अमानत क्या चीज हुई फर्ज कर लीजिए वो खिलाफत है फर्ज कर लीजिए नमाज का पढ़ना फर्ज कर लीजिए इमानत से मुराद किसी के पैसे का बर वक्त अदा करना है अमानत से मुराद शरीयत है अब शरीयत आसमान में क्या अमल करना है शरीयत से जमीन में क्या अमल करना है पहाड़ों ने किस शरीयत पे अमल करना है शाह साहब रहमतुल्लाह का कहना ये है कि ये शाह साहब रहमतुल्लाह की अगर बात मान ली जाए तो फिर दिले से ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वाकया हुआ है नहीं हुआ कब हुआ है वाकया कब हुआ है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने आसमानों जमीनों को जो पेश किया था तो इन्होंने इनकार क्यों कर दिया शाह साहब रहमतुल्लाह सीधी सादी बात करते हैं वो कहते हैं इस्तेदाद नहीं थी लिहाजा अल्लाह ने पहाड़ों को जोड़ दिया आसमान को जमीन को इंसान के जिम्मे लगा दिया ये तुम्हारी इस्तेदाद है बात आ गई अमानत अमानत से मुराद अल्लाह की किताब सीधा सा खुलासा जितने भी मुफस्सिरीन अकवाल लिखते हैं वो कहते हैं मसलन कि अमानत से मुराद अल्लाह ने मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ एक और सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों से सौदा बेचते हुए लेन देन में सही रवैया इख्तियार करना यह अमानत और उन्हें हदीस से भी नहीं दी उन्होंने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत नाजिल हुई और उस अमानत ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली हत्ता कि उस अमानत ने इतनी जड़ पकड़ ली लोगों के दिलों में कि अब वो लोगों के दिलों से निकलने वाली नहीं यानी कुरान और हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसी और आपने फरमाया एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम देखोगे कि आदमी सोकर उठेगा तो उससे अमानत का वक्त जाहिर हो जाएगा और उस पर ऐसा ही असर होगा जैसे आगले से पानी निकल जाए तो एक चिल्ली बाकी रह जाती है बस ऐसे हो पर अमानत उठा ली जाएगी तो सहाबी रजी अल्लाह कहते हैं वो और भी देखा जब सहाबा रजी अल्लाह थे और कुरान और सुन्नत की इतनी पैरवी करते थे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात याद आई कि आपने फरमाया लोग इतनी अमानत में खयानत करने लगेंगे कि तुम लोग कहोगे कि बस ना जगह एक आदमी है जो अमानतदार रह गया है बाकी पूरी मार्केट में सच्चा आदमी हो ही गया हर आदमी धोखा दे रहा है हर आदमी धोखा दे रहा है तो सहाबी रजी अल्लाह वाले मैंने गुजरा था रजी अल्लाह है उन्होंने कहा मुझ पर वो दौर भी गुजरा है कि हमारे इन शहरों में कोई आदमी खयानत करता ही नहीं था मैं जहां से चावा था चीज दे लेता था मुझे पता था कि अगर ये मुसलमान है तो अल्लाह से डरने वाला है और अगर ये ईसाई है तो इसका पादरी से रोकेगा मना करेगा कि लोगों को धोखा नहीं दिया करके और फरमाने लगे कि मैंने अब वो दौर भी अपने बुढ़ापे में देखा है जब लोगों के दिलों से अमानत से जज्बा उठ गया है तो अब तो फलां 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 कबीले में फलां फलां आदमी रह गए हैं बस मैं उन पर एतबार करता हूँ उनके अलावा मैं किसी पे एतबार नहीं करता लोगों से अमानत रखे इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत का हुक्म दिया इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से जो अमीन आदमी है वो क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के अर्श के साए में होगा अमीन आदमी है आदमी अगर सोचे जानते हर चीज अमानत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों को बचाओ तकलीफ दे बातें सुनने एक आदमी ने उधर लिख पता है कि जब भी बात करो ये जरूर कोई ना कोई झूठ बोलेगा जरूर कोई ना कोई तोहमत लगाएगा बचाए अपने कानों को आदमी इससे बात करके रात भर जो नींद नहीं आनी परेशानी होनी है तो दूर से ही सलाम दुआ की काफी है क्या जरूरत है आदमी के साथ ज्यादा तालमेल की निगाह अमानत ये उन चीजों पर नजर न डाले जिसे अल्लाह ने मना किया इसी तरह ओहदा अमानत है कि कोई आदमी किसी ओहदे पर फाइज है तो उस आदमी को चाहिए कि अपने ओहदे की निगरानी करे कि लोगों ने इस ओहदे पे मुझे लगाया है मैं इस ओहदे को पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता इसीलिए अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से जब राय ली गई ओहदे के तलिक किसी ने कोई रियायत किसी की حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بعد عمر کو مقرر کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں بلا کے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا ابوبکر عمر کو مقرر کریں گے اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں حتیٰ کہ انہوں نے جب دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ واقعی مقرر کر دیں گے تو انہوں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈرو عمر کو ہم پر امیر مقرر کر دیں گے لیتے ہوئے تھے بیماری کے فرمایا کسی کو مجھے تکیے سے بٹھا دو تکیا رکھا گیا دکھایا گیا تو فرمانے لگے زندہ عمر اور اللہ دونوں کو تم سے زیادہ اچھی طرح میں جانتا ہوں قیامت کا اگر تم سے پوچھا کہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے بہتر آدمی میں سمجھتا تھا میں نے اس کے ذمے امانت دی ہے خلافت خلافت امانت ہے اسی طرح ڈاکٹر ہے اس کے پاس امانت ہے اس کا علم وکیل ہے اس کے پاس امانت ہے اور بھی صاحب ہے ان کے پاس امانت ہے تو اس امانت کو آگے ٹرانسفر کریں گے ووٹ امانت یہ جو ووٹ دیتے ہیں कि वोट एक अमानत है कि हम किसको अहल समझते हैं उसको वोट देते हैं इसलिए जो लोग वोट अहल को नहीं देते वो जो खयानत करते हैं मुझे पता ही नहीं है कि वोट की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है इसलिए अमानत अल्लाह की इताअत समझिए ये शरीयत अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने अपनी अमानत पेश की क्या साहब कहते हैं आसमान जमीन पहाड़ों को पेश करने को पता भी नहीं था इसके खुदा की इताअत उसके साथ क्या था तो कहते हैं ये वाकया गोया के हुआ ही नहीं بس اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ انسان کو امانت اٹھانے کی تکلیف ہمیں دی کہ تم امانت اٹھاؤ تم میں اتنی چیز ہے کہ ثواب اور عذاب ہمارے ساتھ مغالی کے ہو سکتا ہے تم نماز پڑھ بھی سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے ایک رائے تو یہ ہوئی انشاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے امام غزالی اور غزالی سب لوگ اسی طرف گئے ہیں اگر یہ رائے مان دی جائے تو کوئی اشکال ہے نہیں باقی تو ترین کے یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ہوا ہے اور اس زمانے میں اللہ نے زمینوں پہ آسمانوں میں زمین میں اور پہاڑوں میں اللہ نے زندگی اور شعور کو پیدا کیا اور اللہ نے اسے کہا کہ میری خلافت دیتے ہو اور انہیں اختیار دیا کہ اللہ کے نائب بن جائے سب نے انکار کر دیا ان کا نعرہ ہم بالکل نہیں دیتے اس لیے کہ بہت بڑی امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے اے خدا اگر ہم لے لیں آج اور کل ہمیں عذاب ہو جائے ہم اس میں خیانت کر بیٹھیں بالکل نہیں تیسری بھی رائے تسلیم کی ہے جدہ نے اس کے دوسری رائے اختیار کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اللہ نے انہوں نے کوئی جبر نہیں کیا تیسری بھی رائے تسلیم کی ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ نے امانت نہ پیش کی ہو اللہ نے سب پر امانت پیش کی ہے اور ہر ایک چیز میں شعور ہے اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے حدیث سے بھی پتا چلتا ہے پتھر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں مجھے ایک پتھر کا معلوم ہے جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا ہے جب میں نبی نہیں بھی تھا مسلم کی روایت میں آتا ہے فرمایا مجھے سلام کرتا تھا میں سارے پتھروں کو جانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حجر اسود سے جملہ فرمایا ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور ایسے ویسے کہتے ہیں وہ مفسرین کہتے ہیں پتھر میں سننے کی کوئی صلاحیت تھی تو ہی تو اشارہ فرمایا دوسری جگہ بھی حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا قیامت میں اس پتھر کو بولنے کی طاقت دی جائے گی اور یہ ہر اس انسان کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے صرف ایمان اب ہر آدمی کی گواہی کو جا کے جس نے بھی ہاتھ لگایا دوسرے اشارہ کیا تو سمجھنا آسان ہے نا وہ اس میں فیڈ ہو گیا اب وہ فیڈ ہو گیا ہے قیامت سے جب ایک کمپیوٹر کو کھولیں گے تو ایک ایک کروڑوں کے فہرست میں نکل آئے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ پتھر کو بوسا دیا فرشتے ہیں فرشتوں میں شعور ہے ہی لیکن فرشتوں میں درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں ما منا الا وَلَهُ مقام معلوم اور ہم میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جسے اپنے مقام کا پتہ نہ ہو کہ کہاں کون سی میں نے رکنا ہے کون سا میرا فلانا ہے رضا برابر اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہر فرشتے کو اپنی جگہ پتہ ہے یہ زمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے متعلق بتاتے ہیں قیامت میں یہ بولے گی قرآن کہتا ہے یہ چیزیں بیان کریں گی اور اللہ نے ایک آیت سے ساری بات کو جمع کر دیا اس نے کہا اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح اور حمد دونوں ملا کر نہ پڑتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ میں تسبیح آ گئی اور بحمدہ میں اللہ کی حمد آ گئی فرمایا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح اور حمد نہ بیان کرتی ہو ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن لوگوں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تمہیں آواز نہیں اس کی آتی لہٰذا تمہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ مفسرین کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی آسمانوں پر زمین پر پہاڑ پر بین ملنا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا رب ہم نہیں اٹھا سکتے ہم اٹھائیں گے ثواب ہو جائے گا اس امانت کو لے لیں گے تو اجر دے گا انکار نہیں اٹھا سکیں گے اے رب گناہ ہو جائے گا ہمیں جو کل کو عذاب ہوگا تو اس لیے یہ عذاب جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے مفسرین نے ایک جگہ بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پتھر قرآن بتاتا ہے نا پتھروں کو وہ کہتے ہیں پتھر جو جہنم میں جلایا جائے گا انسان کو تو آگ کی تپش پہنچے گی خود پتھر نے کیا قصور کیا ہے पत्थर से जल रहा है तो पत्थर ने क्या महसूस किया उसको क्यों कभी ताप लग रही फिर मंदिरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा कि कुरान हदीस से साबित है कि अल्लाह के फरिश्ते जहन्नम में भी होंगे तो जिस तरह खुदा उन फरिश्तों को मारने पर मामूल करेगा और उन फरिश्तों पर आग का असर नहीं होने देगा इस पत्थर में भी अल्लाह ने कोई ना कोई खुसूसियत ऐसी रखी है कि आग इस पत्थर को नुकसान नहीं दे फिर वो कहते हैं कि मछली तुम पानी में जाओ तुम्हें डुबो दे पानी लेकिन मछली पानी में ही रहती है उसको पानी से डर नहीं होता उसे तो डर होता है कि वो कुछ ही भी ले जाए तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि अभी नहीं आप मिलना एक तर्जमा तब्दील हुई होगी इन्होंने अल्लाह ने इख्तियार दिया तुम्हारी मर्जी है मेरी अमानत खिलाफत लेते हो नहीं लेते तुम्हारी मर्जी उन्होंने कहा यार हमें खिदमत से मुआफ दूसरी तस्दीक की गई फाबैना या मिल्ला इस हमल के दोनों मानी है अरबी लुगत में इनकार कर दिया कि इसमें खयानत करे अरब कहते हैं कि हमल अमाना उसने अमानत का बोझ उठा लिया ये अरबों में हर जुबान में होता है जिन जुबानों के अदब में बड़े गहराई आ जाती है ये बहुत ऊंचे चले जाते हैं ये अपने अदब के एतबार से जुबान जो होती है वो भी अदबी हो जाती है लखनऊ वाले इनका मिजाज बहुत लखनवी मिजाज नक्ताली बड़े बंद के रहने वाले रात को सोते नीचे जब तक के इतर ना लगा लें उनके लिए बड़ा मुश्किल था इतर के बगैर आप उनके पुरानी तामीरात देखें तो घर में दो दरवाजे होते थे जनाजा जो था कितने दरवाजे से निकालते थे जिससे जिंदा आते जाते हैं यहाँ पे जनाजा निकालते थे कब्रिस्तान का नाम रखते थे फिजर अजमेर के नाम पे मौत नहीं आनी ना तो कब्रिस्तान के दरवाजे पे होता था कि बातें फिजर यानी पाल लेते थे जिंदगी के लिए इसी तरह अरब जो थे ये बड़ा पाल लेते थे मतलब सलीम कहते थे उसको जिसको सांप डस ले अगर सांप का डसा हुआ है उसे मर जाना है उसका नाम उन्होंने कहा सलीम यानी जिसे अल्लाह ताला सलामती दे दे शिफा दे दे तो गोया वो उससे फाज मुराद लेते थे कि बुरा मत मुंह पे ना लाए बुरे फाज से किसी को याद ना करे तो सलीम कह के मुराद लेते थे वो कि उसने क्या किया उसको सांप से काट दिया इसी तरह बहुत जगह पे अच्छे काम से बुरे मान मुराद देते थे हमला वो कहते थे उसने तो अमानत को उठा लिया यानी खयानत की और अमानत का बोझ उसकी गर्दन पे लग गया ये है मुराद उसके अमानत की खयानत कर दी दूसरा आम सीधा तर्जमा अमल अभी नहीं आम मिलना उन्होंने इनकार कर दिया कह रहा हूँ अमानत नहीं उठा दी पहला तर्जमा दूसरा तर्जमा बाबई ना या मिलना उन्होंने कहा ऐरा हम अमानत में खयानत नहीं करते क्योंकि अमानत उठाने का मतलब यह है कि बोझ ले लेना अपने साथ हम अपने साथ बोझ यानी खयानत क्या नहीं लेते इसलिए ये जो तर्जमा है ना जिन नजर आपने किया है उन्होंने बड़े सोच समझ के किया है मेरे आपने मामला मसूद सही ही साहब ने तर्जमा किया है और इसी तरह पीर करम शाह साहब लजरी जो थे पीर साहब ने तर्जमा को उन्होंने और किया है कोई पहले वाला इन्होंने इनकार कर दिया लेकिन तशरीह में पीर साहब को ले आए हैं जो मौका हमने आपसे अर्ज किया है और ये वो चीज है जो पिछले लोगों में अगर आप देखेंगे तो लुगत में साहिब लिसान अलग वगैरह ने इसकी तस्दीक की है साहिब रूस ने इसकी तस्दीक की है और वो कहते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने खयानत से इनकार कर दिया इन्होंने कहा है ना ये अमानत हमें दे दे अब अमानत इनके जिम्मे आ गई तो अमानत कौन सी वो कहते हैं कि खिलाफत नहीं हुई फिर अल्लाह की इताअत और इतना ना नहीं हुई जो इंसान की रुके अमानत का मतलब ये था कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बंदे बन के रहोगे या नहीं जमीन मैंने तुम्हें इस काम पे लगा दिया है कि उगाओ उगाओगी या नहीं आसमान तुम्हें इस काम पे लगा दिया करोगे या नहीं सूरज चांद को कहा तुम्हारे जिम्मे ये अमानत है कि सुबह होना रोशनी होगी और डूब जाना कितने अंधेरा होगा करोगे या नहीं करोगे कुरान में दूसरी जगह भी आया अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमने आसमान और जमीन को पैदा किया तो हमने उनसे कहा पाओ अन्न उतर था तुम्हें मेरी बात माननी है तुम बताओ मैं तुमसे जबर करके मनवा लूं या अपनी खुशी से मेरी इताअत करोगे कालता आसमान और जमीने बोली और का ताली ऐरब हम अपनी खुशी से तेरा काम करें अपनी खुशी से तेरा काम करेंगे अगर जमीन इंकार करते तो पत्थर कैसे होते बादल इंकार कर रहे तो बाद सीधे खुदा कहता है कि चांद और सूरज को देखो अल्लाह की निशानी है रात अल्लाह ताला फरमाता है लक्ष्य से जब कबीला सूरज की मजान है कि जाके चांद के साथ सिपट जाए चांद को छूए अल्लाह ताला ने कुल की मलकी ये प्रभु सूरज और चांद को अल्लाह ने जिस ऑर्बिट और मदार में रखा है सब उसी में चल रहे हैं सूरज और चांद कभी माँ अल्लाह खुदा की नाफरमानी करते और आपस में मिल जाते तो कायनात में बचे क्या ये जमीन अपने मरकज पे है ना ये जमीन अब साइंसदान कहते हैं वो कहते हैं जमीन की गिरे खोल दी जाए कशी जिसकी खत्म कर दी जाए तो छह घंटे के अंदर अंदर ये जमीन तालाब में पहुंच के सूरज में जा गिरे और कितने मिनट और कितने सेकंड में जल जाए और इस कायनात में वजूद ही ना रहे इंसान का कोई याद करने वाला भी हो ना लड़ना रहे कि इंसान नाम की कोई मखलूक दुनिया में कोई जानवर पाया जाता था या क्या अमरीका और क्या यूरोप क्या बरतानिया और क्या एशिया सब के सब छह घंटे के अंदर अंदर खुदा एक रस्सी की ढीली कर दे इस कशिश को अल्लाह खत्म फरमा दे तो छह घंटे के अंदर सूरज में चली जाए सातवां घंटा क्या साढ़े छह घंटे बाद किसी को बताना चले कि दुनिया में इंसान नाम की कोई हस्ती आई थी या नहीं आई थी इसीलिए खुदा कहता है कि तुम रात को देखो हम चमड़ी इतना खींचते हैं ना जानवर की और वो जानवर का जिसम बीच में निकल आता है जिस तरह चमड़ी उसकी खींच जाती है हम रात को इस तरह खींच लेते हैं और सूरज रोशन चमकदार हमारे सामने हो जाता है हम लोग चूंकि इंतजामों पर गौर नहीं करते गौर भी करें तो हम आदि हो गए ना इसलिए रोज रोज हमें नजर नहीं आता एक आदमी को फर्ज कर लीजिए कभी लाख रुपया कुछ दे आप खुश होता है और जिस बच्चे को आप रोज लाभ कर देखते थे उसके लिए लाभ तो सिर्फ मामूली बात बन जाती है इनको रोज मिल जाता है इसकी अल्लाह फरमाते हैं ये अबैन या मिलना इस सारी कायनात ने कहा कि रब हम खयानत नहीं करेंगे जिस काम पे तूने लगा दिया करेंगे वशफक न मिनहा और फिर वो डर गए दो तस्वीरें हो गई डर गए इस बात से जब अल्लाह ने अमानत कर दिया है देखो बड़ी जिम्मेदारी वशफक न मिनहा उन्होंने इनकार कर दिया था डर गए खुदा की अमानत अपने जिम्मे लेना ये तो बहुत बड़ी बात है इसीलिए अल्लाह मुबल्लिग के कहना कि अल्लाह ने ये बात बड़ा जुम्मन जो बात खुदा ने नहीं कही कभी ना कही डरना चाहिए अल्लाह लोग आमतौर पर कह देते हैं देखिए अल्लाह ताला का हुक्म ये है वही अल्लाह का हुक्म कहाँ से है अल्लाह ने कहाँ ये बात फरमाई है कहाँ से खुदा का हुक्म आ गया कोई कहते जी अल्लाह ने कुरान में कहा कुरान को सही कुरान पाक को धीरे नहीं आया कई लोगों को आप देखिए आम जुमले में कि खुदा का ये खुदा का हुक्म नहीं है भाई खुदा ने कहा ही नहीं अल्लाह कहना बड़ी जिम्मेदारी की बात है इसीलिए सीदना मुकर दानों तरबियत की ना हजूर ने जब उन्होंने अपने अहकाम ही पाने शुरू किए खिलाफत जब हुई तो उन्होंने अपनी तकलीर से कहा तुम लोगों को खौफ लाने का खत लिखो और उस पर लिखो कि मेरी तरफ से यह ऑर्डर है कि रुजू करें सेक्रेटरी ने जुमला लिखा कि ये वो अल्लाह का हुक्म है जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह के दिल में डाला गया है और ये काम तुम लोग करो वो ये कहते सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह फैक्ट्री के पहले जुमले को कटवा दिए उन्होंने कहा तुम ये लिखो आजा रहा ये अबू बकर ये अबू बकर की राय है अबू बकर ने यूं कहा ये तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाली वो आखिरी अस्थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जिसके दिल में अल्लाह डालता था उनके पास कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरा ये हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है अल्लाह ने इसमें रखा है नहीं रखा ये अल्लाह ने सचा इसलिए अइमाए मुज्तहिदीन बड़े बड़े अपने हुक्म को बराए रात अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते थे कि अल्लाह का फैसला ये कहते थे भाई हमारा इत्तेहाद है ये हम समझते हैं ये सही है और इसके अलावा कोई राय है उसमें गलती है सच्चे कहते हैं दूसरा मुझसे मुझे वो कहता था मैं समझता हूँ ये मामला ठीक नहीं मेरा इत्तेहाद ठीक है बाकी मुमकिन है उनमें भी हाथों ये कहते थे बाकी मुमकिन है उनमें भी हाथों ये चीजें थी इसलिए अल्लाह की तरफ बराए रात नस्बत कर लेना उस चीज की जो अपने दिल में वाकई होती है ये बड़ी जरूरत का इसीलिए कुरान कहता है اللہ تعالی نے فرمایا بڑے تعلیم ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ھذا حلال و ھذا حرام یہ چیز اللہ نے حرام قرار دی یہ چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جھوٹ بکتے ہیں اپنی زبان سے اللہ کے معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کسی چیز کو حرام اور حلال بتا دیتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دوسرے مدد بھی فرمایا آپ نے اپنا دو قاضی جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جنت میں جائے گا 66 قاضی جب جہنمی اور 33 جنتی اس لیے کہ قضاء اور فیصلہ کرنا کوئی آسان چیز ہو رہی ہے اتنا بچتے ڈرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کہاں جا پہنچی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قاضی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی سودے کو قبول کر لے جائے اور قاضی لگ جائے گی جاتا مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قاضی نہیں ملا حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے بڑے بڑے لوگ تھے قاضی نہیں ملا کہتے تھے نا ٹھیک میں نہیں پڑھنا حتیٰ کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عبداللہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کرتے رہے ہیں یہاں مدینہ منورہ کی قضاء کا عہدہ قبول کرو انہوں نے کہا حضرت میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قاضی نہیں بنوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہنے لگے اچھا پھر مجھ سے وعدہ یہ کر کے اٹھو کہ تم میری زندگی میں کسی کو یہ بتاؤ گے نہیں ڈر گئے کہ باہر جب بات جائے گی تو لوگ عبداللہ کی مان کر یا عبداللہ کی ظلم کر قسمیں کھانے لگیں گے تو قاضی کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا حضرت آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اچھا آپ جاؤ کسی سے ذکر نہیں کرنا تم نے قسم کھائی کسی کے ذکر مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے مفتی اپنے فتوے کو اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا کہ نافذ کر دے وغیرہ حقیقت میں وہ بھی بات نہیں قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے اس چیز کو نافذ کر دیتا ہے مفتی کے پاس اختیار نہیں ہوتا مفتی کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے قاضی کہتا ہے حرام ہے اور مجھے پتا چلا نا کہ یہاں یہ کام ہوا ہے تو میں جیل میں ڈلوا دوں گا یہ فرق اس لیے فتوے میں بہت احتیاط کی ضرورت بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے آدمی جب پڑھتا ہے تو کہیں جا کر کتنے گہرے اور ٹھوس علم کے بعد کہ آدمی میں ملکہ پیدا ہوتا ہے جو فتوے کی بات کرے اور بڑے بڑے اچھے مفتی فتوے کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یوں لکھا ہے مسئلہ یہ آیا ہے بڑی مشکل سے کوئی کہتا ہے کہ فتوا میں دیتا ہوں میں کا نفس ہی وہ اڑا دیتے ہیں اس لیے کہ کون سی بڑی ذمہ داری ہے مفتی تو سر ابھی تک راستے پہ بیٹھا ہے ایک آدمی سے آگے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کدھر ہے مفتی صاحب نے جانا جاتا ہے ہم مفتی کو اگر نہیں پتا تو صاف کہتے بھائی مجھے نہیں پتا خدا کا گھر کدھر ہے کسی اور سے مفتی کو پتا ہے معاذ اللہ اور جان بوجھ کے اسے دوسری راہ پہ لگا دیتا ہے قیامت میں جو ملاقات ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا قبر میں کہ میرا ایک بندہ آیا تھا میرا گھر تو اسے پوچھ رہا تھا مجھے پتا تھا میرا گھر کدھر ہے تم نے اسے دوسری طرف لگا دیا کیا خدا کو جواب دے گا ہم دنیا میں غور کریں نا کہ آپ کا کوئی بڑا اچھا قریبی دوست ہے کوئی آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا اپنا دوست اس محلے میں بڑا اچھا ہے یار میری بڑی ریلیکس ہے گھر بنا دے گی آپ کو بتائے گا آپ اس کے وجود سے کہتے ہیں کہ دوسری گلی میں چلے جاؤ آپ کو دوست دوسری گلی میں چلا گیا تھا کسی دن پھر دوست سے آ کے دے گا کہے گا تمہارے محلے میں اپنا جو گھٹا تھا اس مجھے غلط راہ پہ تو دوسری گلی بتا دی تھی تو آپ سے کتنے ناراض ہوں گے کہ یار میرا گھر میں پوچھنے آیا تھا تو سیدھا راہ بتائی ہوتی تم نے دوسری گلی کا بتا دے دیا شرعی احکامات یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں یہی چیز ساری کائنات میں اللہ نے کہا بش وقت نہ ڈر گئے زمین و آسمان چیزیں کہ اللہ کی امانت اللہ نے کہا بالکل یہ چیزیں ہم کریں گے یا بالکل اللہ کی امانت نہیں کھائی دونوں سبزی میں زمین نے کہا میں اگاؤں آسمان نے کہا میں اپنی برکات ظاہر کروں گا بادلوں نے کہا ہم برسیں گے پہاڑوں نے کہا ہم جگہ پر قائم رہیں گے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ انسان اور انسان نے اسے اٹھا لی سب نے انکار کر دیا اب آگے کیا چیز اٹھا لی یہاں پہنچ کے پھر وہ امانت کی تفسیر خلافت سے کر دیتے ہیں کہ انسان نے خلافت کو اٹھا لیا یا انسان نے ہمت کی دیکھا کیوں نہیں اے رب میں تیری چیزیں اٹھاؤں گا اے پروردگار جو چیز تو کہے मैं अमानत साबित करने के लिए तैयार हूं इन्नहु काना ज़ुलूमन जबूला और इंसान जो था इस खाने में ज़ुलूम और जबूर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इंसान ज़ालिम मतलब यह हुआ कि इंसान ने अमल में तकदीर कर दी ज़ुल्म का अमल नहीं होता कहते नज़रिए में होता है सोचने में भी होता है कि आदमी ज़हनी तौर पे बाइस हो जाए जाए लेकिन आम तौर पे दिल अमलन होता है इंसान ने अपने अमल को खराब कर दिया हमसे वादा करके कि अल्लाह के खिलाफ मेरी इताअत करूंगा यहां आकर उसने इताअत को तोड़ दिया यहां आके इंसाफ से हट इसलिए सबसे अच्छे मुआशरे दुनिया में वो हैं जहां जिन मुआशरों में इंसाफ पाया जाता है जहूला और अल्लाह ने कहा उसके साथ साथ क्या हो गया जालिम भी था और बेइल्म हो गया जहालत कुरान ये बताता है कि जो आदमी जिस शोबे में है उसका इल्म हासिल करे वगरना लोग उस पे एतबार करेंगे और वो लोगों को खराब करेंगे आप देखें शहर में बच्चे बच्चे अपने आप को उस्ताद कह रहे होते दुकानें खोल लेते चार दिन काम नहीं किया हुआ होता और पांचवें दिन वो कहता है कि यार इसकी दुकान खोलता है वो बातें बताता है मोटरसाइकिल वाला हैरान होता है कि यार क्या ये चीजें हैं और वो दर हकीकत तजर्बा करता है मोटरसाइकिल के मैकेनिक होने के मैकेनिक तो जब वो आज चार दिन उस्ताद के पास लगाए होते कोई चीजें खाई होती उस्ताद ने दो चार रुपया मारा होता तो कुछ समझ आती ना वो तो तरबियत में आएगी वो खुद बखुद ही मैकेनिक सिर्फ राइडिंग सीट पे बैठना आ जाए अब वो उस्ताद है पूरे शहर का इश्तेहार दे देगा कि आओ और उसने राइडिंग सीट को उससे पूछे उसने इल्म कितना हासिल किया इस चीज के बारे में इसीलिए मुसलमानों ने जब खिलाफत की तो मुसलमानों के दया में उनके शर्म में कोई आदमी दुकान नहीं खोल सकता था जब तक सर्टिफिकेट हुकूमत जारी नहीं करती 1857 की जब जंग आजादी हुई है तो बड़े बड़े साहिबे फन लोग आ गए हिंदुस्तान पर्टिकुलर उनमें कौन लोग थे वो लोग थे जो हार फूलों के बनाते थे माली काम करते थे वो लोग थे जो लोगों के लिए कपड़े थे वो आ गए यहाँ और उन्होंने जाकर दुनिया के दूसरे ममालिक में बना दिए कौन लोग थे जो जूते बनाते थे एक से एक जूता बनाते थे हमारे यहाँ भी गुस्सा है ये त्रिकैल जूता कहलाता था त्रिकैल जहांगीर ने पहले सबसे पहले उसने बारे में पहना था कि ये त्रिकैल जूता ये कहना नहीं लगा अब आप देखें जूता की जगह पर मिलता है ना वो बनाते थे ऐसा कि अगर अगर कांटे पे पाँव आ जाए तो पाँव अंदर कांटा घुस जाता था इतने नरमोनाल जूते वो बनाते थे क्या थे मशीने बनाने वाले थे बड़े बड़े खूबसूरत मशीने बनाते थे लोग फखर करते थे चूड़ियां बनाने वाले थे हर आदमी यहां से भागा जींस बनाने वाले भी भागे मुसलमान बड़े लिखे थे जिल्दे होती थी ये जो आपका पंजाब है 90% पंजाब में पढ़े लिखे थे 90% पंजाब में पढ़े लिखे थे एजुकेशन कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिखा कि पंजाब को इस तरह जाहिर बनाया जा सकता है पंजाबी जब जाहिर हो जाएंगे तो इनसे भी फौजी प्रती करने चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि बाल और इन इलाकों में ये हैं जो ट्रेन लोग हैं फिर उन्होंने क्या किया लंबा किस्सा खुलासा करिए कि उन्होंने कहा पटवारियों ने ये जो प्रिंसिपल था एजुकेशन कॉलेज का उसने गवर्नमेंट को तजवीज दी कि आप सिर्फ इतना कर दें कि जितने भी उस्ताद स्कूलों से पढ़ाने वाले हैं उनको तनख्वाह गांव में मिल जाती है आप इस तनख्वाह को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दे इतना उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जब उस्ताद तनख्वाह देने जाएगा तो दो चार दिन पैदल रस्ते में लगेंगे दो चार दिन आने को लगेंगे तो हफ्ता 10 दिन तो स्कूल ही नहीं खुलेंगे जब मदारिस नहीं खुलेंगे तो हफ्ता 10 दिन बच्चे हैं दो तीन रस्ते गुजरते गुजरते सब अनपढ़ हो जाएंगे और जान बूझ के उन्होंने अनपढ़ किया और फिर अपने लिए काम किया इतने चीज 90% के पंजाब पढ़े लिखे लोगों को इसी के पंजाबी शायद आप देखें वो एक शेर में वो बात कहते हैं जो पूरी किताब की तस्वीर हो पंजाबी के शौरा इतने मशहूर थे लेकिन लोग अब पढ़ते ही नहीं उन चीजों को तो आदमी किधर कर किताबों की जिस बंदी आम बड़ी बड़ी खूबसूरत जिले बनाई जाती है कराची आप जाए ये खानदान है वो अपनी जिंदगी बना रहा है उसकी जिंदगी एक याद की तरह है कितनी नफाकत से चमड़े की जिंदगी बनती थी अभी कुछ हफ्ता पहले ही लोग जिंदों पर गुलाब चढ़ाया करते थे बहुत खूबसूरत गुलाब कुरान पाक के तरह भी चढ़ाते लेकिन आम गुलाबों में भी गुलाब चढ़ाया करते थे हैदराबाद के जो जिंद वाले थे ये भागे मक्का मुकर्रमा वहां जाकर मक्का में दुकान खोलना चाहते थे एक आदमी जूतों की दुकान खोलना चाहता था ये जिंद वाले थे इन्होंने कहा मक्का उस्मान खिलाफ से स्थानिया थी इन्होंने कहा कि मक्का में दुकान खोलनी है तो म्युनिसिपल कमेटी ने वहां मक्का मुकर्रमा में दरखास्त दी तो उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है आपने कहां से ये इल्म हासिल किया उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन जिंद बनाते हैं वहां नवाब साहब के यहाँ थे लेकिन नवाब साहब अब जंग में तय हो गए कौन उठाए उठाए साहब कितना मक्का आए हैं उन्होंने कहा अच्छा फिर इसके दूसरी जरूरत यह है कि जिंद बनाते तो जिंद बना के दिखाई दो उस म्युनिसिपल कमेटी ने शहर के मेयर को भेज दी मक्का की गवर्नर कि ये जिंद वाला है ये एक वाक्य सुना रहा हूँ सैकड़ों ऐसे वाक्य है गवर्नर ने जिंद देखी तो बड़ी बता दी मक्का के गवर्नर ने जिंद को खत लिख के तुर्की इस्तांबुल भेज दिया और कहा ये जिंद बनाइए किसी ने सर्टिफिकेट नहीं है और वो चाहता है ये उसकी दरखास्त साफ है और उसका ख्याल ये है कि मक्का में दुकान खोले तो इतनी अच्छी जिंद बनाने वाले को यहाँ पर इजाजत होनी चाहिए अमीर करीमत जमीन से पूछ के बताओ करीमत जमीन तुर्कों के पास जब पहुंचा तो खलीफा ने सिर्फ मुलाजा किया उन्होंने कहा उसको लिखो कि मक्का में इजाजत नहीं हमारे पास आ जाए इतनी अच्छी जिंदा हमें पसंद आई क्या और उससे जाके इस्तांबुल में दुकान खोली और इस्तांबुल में जिंदे बनने लगी ये मुसलमानों के इलाकों के एक एक आदमी हत्या के बाल काटने वाला जो था ये फन अपना उसका सर्टिफिकेट होता था कि बाल काटने और हमारे यहाँ ये है जवाब अमानत की सिर्फ नहीं रही ना तो न्यूरोसर्जन भी सिविल अस्पताल के जन्म साल पहले जाली लिखे कि न्यूरोसर्जन है ही नहीं और लोगों के खोपड़ियां खोल खोल के दिमाग के ऑपरेशन कर ऐसे एक और बात याद आ गई चलिए कोई बात करते हैं फिर आइंदा से बाकी हैदराबाद बाबरची रखे जाने पे सर्टिफिकेट होगा कि किसके यहाँ ये खाना पकाने का काम करता है वो भी सर्टिफिकेट दिखाता था कि जनाब राम राम के आदमी काम किया है और डरते डरते के भी जाए भी ना मिला दे तो हैदराबाद में भगत की क्या और जंग हो चुकी थी उससे नवाब साहब ने कहा कि मैं भगत की हूँ नवाब साहब ने कहा क्या खाना पकाते हो उसके बाद वो जो कहें तो पहले कौन कहाँ काम जैसे राम राम दिखा तो सर कोई तनत काम खाना पका देता हूँ आप खाएं पसंद आए तो लीजिए तो नहीं तो हैदराबादियों के खाने क्या नजाकतें हैं अब तक भी बिगाड़े बैंगन और उनके उनका खुबानी का मीठा और क्या क्या चीजें हैं जो कोई जानते हैं सारे हैदराबाद के नवाब साहब ने सिखा सभी पकाओ उसने नवाब साहब से क्या पकाओ उसका जो सबसे ऐसी बदाम खाने के लिए दाल पका देता हूँ फिर आप दाल चखेंगे कहा हाँ तो उन्होंने कहा माछ की दाल नवाब साहब ने इजाजत दे दी माछ की दाल हो गई अगले दिन आया कि इतने पैसे देने हैं नवाब साहब ने सख्त कर दिए फिर अगले दिन इतने पैसे नवाब हैरान हुआ पढ़ के और उसने कहा कि 100 रुपए से ज्यादा दे दिए ये माछ की दाल क्या चीज है पक्की नहीं दे रही पैसे दे दिए उसका हफ्ते बाद हफ्ते बाद नवाब साहब बाल में टहल रहे थे और बड़े परेशान और उन्होंने एक दरख्त कहीं से मंगा के लगाया था और दरख्त जो था वो हरा नहीं सूख गया मिट्टी या जो चीज भी रात नहीं आई होगी जो भी हुआ होगा तो बड़े परेशान थे बड़े बड़े आदमियों को बुलाया कि दरख्त का कुछ करो मुझे बड़ा इसका शौक है और ये दरख्त अब बिल्कुल झड़ गए सारे पत्ते उसके तो इतने भी वजीर ने आके कहा कि हजूर वो बावर्ची खड़ा है और ये हिस्सा है तूने बड़ा गुस्सा आया कहने लगे हफ्ता हो गया दाल नहीं पकी और हफ्ते का कहना था इतने दिन गुजर गए 100 रुपए से ज्यादा गुना उसको जो लिस्ट देखी तो हैरान हुए कि इसमें 100 रुपया और लगे सब 200 रुपये दाल लगने थे 1780 की 1870 की बात है तो उन्होंने गोडाउन दिया कि पैसा खुला लग रहा है कितने सौ रुपए लग गए और अभी तक मांस की दाल नहीं बनी दांत सुनके चला गया खंडिया उठा कर दिया और कहने लगा कि नवाब साहब अफसोस है आपने फन की कदर नहीं आपने जानी आपको अंदाजा नहीं है कि मांस की दाल बनाना कितना मुश्किल है और आपको पता नहीं है इसमें कितने जतन करने पड़ते हैं कितनी रातें जाग जाग के काम करना पड़ता है और आज इससे क्या मैं ठहर नहीं नवाब इतनी राधा करते हैं क्या उठाकर कुछ दीवार पे तो वो दरख्त से बीमारी जरा पहले ही वो बना हुआ था जिसके वो रह गया था एक बना ही और चला हमें भी लाके चला गया खत्म हो गई बात हफ्ते के बाद नवाब साहब का दरख्त खराब बड़ा ढूंढा उसको कि क्या चीज आखिर इसमें डाली थी इंडिया ने के दरख लगा हो गया बड़े दूर से वो बहुत ही तेजी मिला उन्हें अब तो कैसा करते थे और कैसे थे उसके हाथ के पके बिठाते तो जिस कितनी ताकत मिलती ये तो भरा हुआ दरख इसकी हड्डिया आधी बनी हुई जिंदा कर गई इसलिए ये जो अमानत का वक्त है ना ये अमानत का वक्त अल्लाह कहता है हम अलहल इंसान इंसान ने उठा दिया यानी वो अपने आप को इस फैजात के मुताबिक साबित करे दावे के मुताबिक साबित करे दावा करता है मार्केट में आके बैठता है तो ये दावा है कि मैं असीम हूँ चार आदमी जाए तो साबित हो जाए बाकी सब सही डॉक्टर दावा करता है कोई इलाज कर सकता है चाहे चार आदमियों को दवा दे तो पता चलेगा एक आदमी दावा करता है कि जनाबे वाला मैं सबसे हल कर दूंगा तो हल करके दिखाए झूठे दावे करने से मना कर दिया हमारा इंसान अल्लाह का जालिम और जाहिल है एक की नतीजे की गई के दावे पर पूरा नहीं करा अमल के मामले में जालिम हो गया अमल सही नहीं किया और इल्म नहीं था कि क्या करना है काम था इनके काम में दखल देने लगा तो जाहिल हो गया फिर आगे अल्लाह ने बताया है कि तकलीफ कैसे होती है दूसरा इंशाल्लाह।